एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने वाकई दुनिया भर के पाठकों के दिलों को छुआ है। गेल हानिमैन का पहला उपन्यास एलेनोर ओलिफेंट इज कम्प्लीटली फाइन।
हाँ, ये 2017 में आई और आते ही मतलब छा गई। कोस्टा डेब्यू नॉवेल अवार्ड मिला इसे, रीज विदरस्पून के बुक क्लब में भी शामिल हुई।
हाँ।
और इसे अक्सर अपलिट कहा जाता है ना, मतलब उम्मीद जगाने वाला लिटरेचर।
बिल्कुल, हालांकि ये टैग थोड़ा कह सकते हैं पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि किताब अकेलापन, बचपन के सदमे, मेंटल हेल्थ जैसे मतलब बहुत ही गंभीर मुद्दों को छूती है, और बहुत ईमानदारी से।
सही कहा। तो आज हम इसी सफर पर चलेंगे, सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एलेनोर ओलिफेंट की यात्रा के मायने क्या है।
हाँ, उसके अकेलेपन के पीछे क्या था, कैसे मतलब इंसानी जुड़ाव की एक छोटी सी किरण भी अंधेरे को दूर कर सकती है।
और सबसे जरूरी सवाल, कम्प्लीटली फाइन होने का मतलब क्या है असल में। खैर, कहानी सेट है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, तो चलिए एलेनोर की दुनिया में चलते हैं।
तो एलेनोर ओलिफेंट करीब 30 साल की, एक ऑफिस में फाइनेंस क्लर्क है, और उसकी जिंदगी आप कह सकते हैं बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह चलती है, एकदम व्यवस्थित।
हाँ, नियम से बंधी हुई और बहुत अकेली, सोशल सिचुएशन में थोड़ी अजीब है ना, जैसे पता ही ना हो कि नॉर्मल बातचीत क्या होती है।
बिल्कुल, और ये जो व्यवस्था है ये सिर्फ बाहरी नहीं है, ये उसकी पहचान बन गई है। हफ्ते के 5 दिन ऑफिस जाना, रोज लंच में वही खाना,
सप्ताह अंत अकेले बिताना, ये सब एक तरह का मतलब कवच लगता है, जैसे दुनिया से बचने का तरीका।
हाँ, और उस कवच के पीछे जो दर्द है, जो यादें हैं, उन्हें दबाने का उसका तरीका, हर वीकेंड 2 बॉटल वॉडका।
उफ।
और उसका जो एक ही रेगुलर कॉन्टैक्ट था ना।
हाँ, वो फोन कॉल
अपनी मम्मी के साथ हफ्ते में एक बार।
लेकिन वो कोई प्यार भरा कॉल नहीं था।
बिल्कुल नहीं, सिर्फ आलोचना, मतलब ताने, इमोशनल मैनिपुलेशन, एक तरह से जहरीला रिश्ता था वो।
और कमाल या शायद दुख की बात यह है कि एलेनोर खुद को समझाती है कि वो कम्प्लीटली फाइन है, उसे लगता है मुझे किसी की जरूरत ही नहीं।
हाँ, ये आत्मधोखा है बहुत गहरा। उसे लगता है मेरा जीवन परफेक्ट है।
उसकी भाषा भी अलग है, एकदम फॉर्मल, सटीक, थोड़ी पुरानी स्टाइल की अंग्रेजी बोलती है।
और दूसरों के ग्रामर, कपड़ों पर तुरंत टोक देती है। शायद ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, दूसरों को जज करके खुद को बेहतर महसूस कराना।
और उसके चेहरे पर वो निशान, बचपन में आग लगी थी, उसके निशान हैं।
हाँ, वो सिर्फ फिजिकल निशान नहीं है, वो उसके अंदर के जो गहरे जख्म है ना, उनका प्रतीक है, जिन्हें वो छुपाना तो चाहती है पर छुपा नहीं पाती।
तो शुरू में हमें एक ऐसी एलेनोर मिलती है जिसके चारों तरफ दीवारें हैं, अदृश्य दीवारें।
लेकिन दीवारें कितनी भी मजबूत हों, जिंदगी कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही लेती है ना?
बिल्कुल। और उपन्यास का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है, एलेनोर की वो कंट्रोल्ड अकेली दुनिया और इंसानी रिश्तों की जो उलझी हुई अनप्रिडिक्टेबल सच्चाई है, उसका टकराव।
और ये टकराव शुरू होता है एक अजीब से मोह से। वो एक लोकल म्यूजिशियन है, जॉनी लोमंड। उसे देखकर एलेनोर को लगता है कि बस यही है वो जिसके लिए मैं बनी हूँ।
ये पूरी तरह से एक तरफा है, उसका अपना वहम, लेकिन इसी वहम के चलते वो पहली बार अपनी दुनिया से बाहर कदम रखती है।
हाँ, वो खुद को इम्प्रूव करने का एक प्रोजेक्ट शुरू करती है, नया हेयर कट, मैनिक्योर, नए कपड़े। उसके लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स भी बहुत बड़े थे,
जैसे कोई पहली बार अपने घोंसले से बाहर झांक रहा हो।
बिल्कुल। और तभी उसकी जिंदगी में 2 और लोग आते हैं, अनजाने में ही सही, पर वो उसकी जमी हुई दुनिया को पिघलाने का काम करते हैं। एक तो है रेमंड गिबन्स।
रेमंड ऑफिस का आईटी वाला बंदा है ना, थोड़ा बिखरा हुआ सा, आम सा दिखने वाला।
हाँ, लेकिन दिल का बहुत साफ, दयालु और गजब का धैर्य है उसमें। वो एलेनोर की अजीब बातों पर हंसता नहीं, उसे जज नहीं करता।
और दूसरा अहम किरदार है सैमी थॉम, एक बुजुर्ग आदमी जो सड़क पर गिर जाता है।
हाँ, और यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। एलेनोर जो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन से बचती, वो रेमंड के साथ मिलकर सैमी की मदद करती है।
ये जो अनप्लान्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस है, ये उनके बीच एक कनेक्शन बना देता है।
हाँ, रेमंड और एलेनोर के बीच एक अजीब सी मतलब दोस्ती शुरू हो जाती है, और सैमी की वजह से एलेनोर उसके परिवार से भी मिलती है। उसे पहली बार अपनेपन का, नॉर्मल जिंदगी की गर्माहट का एहसास होता है,
एक ऐसी दुनिया जो उसने कभी देखी ही नहीं थी।
बिल्कुल, और यहीं से एलेनोर का वो खोल जो है वो चटकना शुरू होता है। पर यह आसान नहीं है, वो बहुत ऑकवर्ड है सोशल सिचुएशंस में।
हाँ, सैमी के परिवार की पार्टी में जाना हो या किसी के अंतिम संस्कार में, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, क्या बोलना है।
उसकी वो सीधी सपाट बातें कभी कभी फनी लगती हैं, पर उस हंसी के पीछे उसका अकेलापन, उसकी सोशल स्किल्स की कमी साफ दिखती है। लेकिन रेमंड उसके साथ रहता है।
रेमंड का रोल यहाँ बहुत जरूरी है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है जो उसे बचाने आया हो।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस एक अच्छा दयालु इंसान है। उसकी सिंप्लिसिटी ही उसकी ताकत है। वो एलेनोर को फिक्स करने की कोशिश नहीं करता, बस उसे दोस्त की तरह अपनाता है, उसकी बातें सुनता है बिना जज किए।
हाँ, और रेमंड की ये मौजूदगी, ये उस मम्मी की आवाज से कितनी अलग है।
बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ रेमंड की वो सहज दयालुता है जो उसे हिम्मत देती है,
और दूसरी तरफ वो फोन कॉल्स जहां मम्मी उसे लगातार नीचा दिखाती है, उसकी हर बात को काटती है, उसे गिल्ट महसूस कराती है।
वो कॉल्स एक जहरीली रस्म जैसे हैं जो उसे बार बार अतीत के अंधेरे में खींचते हैं।
तो एलेनोर इन दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। रेमंड की दोस्ती उसे अच्छा महसूस कराती है?
मन से नहीं, डॉक्टर टेम्पल से मिलना शुरू करती है।
हाँ, शुरू में तो बहुत बंद रहती है, अपनी फीलिंग्स, अपना पास्ट, कुछ भी शेयर करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, जैसे कोई जंग लगा दरवाजा हो जो खुलना ही नहीं चाहता।
वो थेरेपी को भी बस एक काम समझती है कि बस करना है।
लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था, वो शायद खुद भी नहीं समझ पा रही थी।
पर फिर कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां एलेनोर का वो भ्रम वाला महल वो ढह जाता है।
हाँ, वो उपन्यास का सबसे मुश्किल, सबसे डार्क फेज है।
वो पल आता है जॉनी लोमंट के कॉन्सर्ट में।
बिल्कुल, वो पूरी तैयारी से जाती है, नई ड्रेस, नया कॉन्फिडेंस, और दिल में वो झूठी उम्मीद कि जॉनी उसे देखेगा, पहचानेगा।
ये उम्मीद ही कितनी नाजुक थी, पूरी तरह उसके अपने मन की उपज। और जब वो असल में जॉनी को स्टेज पर देखती है, एक आम सा थोड़ा शैलो सा म्यूजिशियन, तो उसका भ्रम टूट जाता है, चकनाचूर।
उसे एहसास होता है कि ये सब कितना खोखला था, वो आदमी उसे जानता तक नहीं।
हाँ, जिस सपने के सहारे वो जी रही थी वो एक पल में बिखर गया।
और इसका असर सिर्फ निराशा नहीं होता, ये उसे पूरी तरह तोड़ देता है। ये सिर्फ एक सिंगर की बात नहीं थी।
नहीं, ये उसकी जिंदगी में उम्मीद की जो आखिरी किरण थी ना, उसके बुझ जाने जैसा था।
वो पूरी तरह टूट जाती है। घर जाकर वो वोडका और पेन किलर्स का ओवरडोज ले लेती है।
वो उस दर्द से, उस अकेलेपन से, उस गिल्ट से भाग जाना चाहती है जिसने उसे सालों से जकड़ रखा था।
लेकिन यहाँ फिर वो मानवीय जुड़ाव काम आता है, रेमंड।
हाँ, रेमंड नोटिस करता है कि एलेनोर काम पर नहीं आई, उसे चिंता होती है।
और वो सही टाइम पर उसके फ्लैट पहुंच जाता है।
उसे बेहोश पाता है, तुरंत मदद बुलाता है। वो उस पल में सचमुच उसकी लाइफलाइन बनता है।
ये दिखाता है कि कभी कभी किसी का हाल पूछ लेना भी कितना जरूरी हो सकता है।
तलती हैं। ये उसके लिए एक वेकअप कॉल जैसा था।
हाँ, अब वो थेरेपी को ज्यादा सीरियसली लेने लगती है।
अब वो तैयार है डॉक्टर टेम्पल के साथ अपने अतीत का सामना करने के लिए, उन यादों को खोलने के लिए जिन्हें उसने इतने सालों से कहीं गहरे दबा रखा था।
और धीरे धीरे, परत दर परत, उस आग की सच्चाई सामने आने लगती है।
और वो सच्चाई बहुत भयानक है। पता चलता है कि उसकी माँ सिर्फ क्रिटिकल नहीं थी, वो हिंसक थी, अपमान करती थी। एलेनोर का बचपन डर और निग्लेक्ट में बीता था। और फिर वो रात जब माँ ने शायद उसे और उसकी छोटी बहन मैरियन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
हाँ।
और खुद को, अपनी बहन को बचाने के लिए नन्ही एलेनोर ने
आग लगा दी थी।
एक हताश कदम।
उस आग में माँ और छोटी बहन मैरियन दोनों मर गईं, एलेनोर बच गई, जिस्म पर जलने के निशान और रूह पर गिल्ट का बोझ लेकर।
उसे लगता था कि वो अपनी बहन की मौत की जिम्मेदार है। यही बोझ उसकी सारी अजीब आदतों, उसके अकेलेपन, उसकी खुद को सजा देने की टेंडेंसी की जड़ था।
लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे शॉकिंग खुलासा तो अभी बाकी था।
वो फोन कॉल्स वाला।
हाँ,
बिल्कुल।
डॉक्टर टेम्पल की मदद से एलेनोर धीरे धीरे इस भयानक सच्चाई को समझती है कि उसकी माँ उस आग में 15 साल से भी पहले मर चुकी थी।
तो वो फोन कॉल्स, वो असली नहीं थे?
नहीं, कभी नहीं थे।
तो फिर वो आवाज किसकी थी? वो आवाज जो उसे हर हफ्ते टॉर्चर करती थी।
वो आवाज वो उसके अपने अंदर से आ रही थी। वो उसके PTSD का, उसके ट्रॉमा का नतीजा था। सालों से वो अपनी माँ की आवाज का हेलुसिनेशन जी रही थी।
ओ माय गॉड, मतलब जिस मम्मी से वो डरती थी, नफरत करती थी और फिर भी बात करती थी, वो उसके अपने दर्द का प्रेत था।
हाँ, ये जानना उसके लिए एक साथ भयानक भी था और मुक्तिदायक भी।
एक तरफ ये एहसास कि वो सालों से एक भ्रम में थी, दूसरी तरफ ये आजादी कि अब वो आवाज उस पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बाहरी नहीं भीतरी थी। बिल्कुल, ये समझ एलेनोर के लिए टर्निंग पॉइंट बनती है। कहानी के आखिर में एक सीन है जहां वो उस खिलौना टेलीफोन को फेंक देती है।
हाँ, जिससे वो कॉल करती थी।
हाँ, ये उस अंदरूनी आवाज को चुप कराने का, उस प्रेत से आजाद होने का सिंबल है।
तो क्या उपन्यास के अंत तक एलेनोर कम्प्लीटली फाइन हो जाती है, मतलब पूरी तरह ठीक?
शायद ठीक या फिक्स सही शब्द नहीं है। अतीत के जख्म ऐसे नहीं मिटते, लेकिन हाँ, वो हीलिंग के प्रोसेस में है।
वो अब सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही है ना।
हाँ, वो जीना सीख रही है।
बिल्कुल,
उसके जीवन में अब असली रिश्ते हैं। रेमंड के साथ एक गहरी सच्ची दोस्ती है, सैमी के परिवार के साथ एक कनेक्शन है, वो अकेली नहीं है।
और सबसे बड़ी बात, वो खुद को एक्सेप्ट करना सीख रही है, अपने निशानों के साथ, अपने पास्ट के साथ।
हाँ, सेल्फ काइंडनेस सीख रही है, दूसरों से मदद लेना, दयालुता एक्सेप्ट करना सीख रही है, जो पहले उसके लिए नामुमकिन था। वो समझ रही है कि कमजोर होना बुरा नहीं है।
नॉवल का एंड बहुत रियलिस्टिक है, कोई फेरी टेल एंडिंग नहीं है। रेमंड और एलेनोर के बीच गहरी दोस्ती है, शायद आगे कुछ हो, पर फिलहाल दोस्ती अहम है।
हाँ, अंत उम्मीद भरा है, पर यह भी दिखाता है कि हीलिंग एक लंबा प्रोसेस है। सफर जारी है, पर अब वो अकेली नहीं है।
ये किताब इतने सारे जरूरी विषयों को छूती है और बहुत ही मानवीय ढंग से, जैसे अकेलापन।
हाँ, आज के जमाने की एक छिपी हुई महामारी जैसा। एलेनोर की कहानी दिखाती है कि ये कितना दर्दनाक हो सकता है, भले ही बाहर से सब ठीक लगे।
और बचपन के ट्रॉमा का असर कैसे वो हमारी पूरी जिंदगी को शेप करता है, हमारे रिश्तों को, हमारे नजरिए को।
बिल्कुल, एलेनोर इसका जीता जागता उदाहरण है।
लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी देता है, साधारण सी दयालुता की ताकत दिखाता है। रेमंड ने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया।
नहीं, उसने बस उसे देखा, उसे सुना, उसके साथ काइंड रहा, और उसी लगातार मिलने वाली दयालुता ने उसकी जिंदगी बदल दी।
ये हमें याद दिलाता है कि हम सब में वो ताकत है किसी की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने की।
मेंटल हेल्थ और उससे जुड़ा जो स्टिग्मा है, वो भी एक अहम मुद्दा है। लोग एलेनोर को अजीब समझते थे।
हाँ, उपन्यास हमें कहता है कि बाहरी व्यवहार से परे देखो, समझने की कोशिश करो, सहानुभूति रखो,
क्योंकि जो बाहर से अजीब लगता है वो अक्सर अंदर के गहरे दर्द का संकेत हो सकता है।
और ये सर्वाइविंग और लिविंग का फर्क बहुत अच्छे से दिखाता है। शीर्षक की आयरनी कम्प्लीटली फाइन इसी सफर को दिखाती है।
अंत में ये परिवार की परिभाषा पर भी सोचने को मजबूर करता है। क्या परिवार सिर्फ खून के रिश्ते हैं, या असली परिवार वो है जहां प्यार और सपोर्ट मिले,
जैसा एलेनोर को रेमंड और सैमी के परिवार से मिला, चोजन फैमिली का कॉन्सेप्ट।
बिल्कुल, और इन सब बातों को कहने का जो गेल हनीमैन का तरीका है, वो भी बहुत स्पेशल है।
हाँ, फर्स्ट पर्सन नरेशन, हम सीधे एलेनोर के दिमाग में पहुंच जाते हैं, दुनिया को उसकी नजरों से देखते हैं।
उसकी वो अजीब फॉर्मल, कभी कभी बहुत फनी बातें, हम हंसते हैं पर जानते हैं कि पीछे दर्द है।
और वो एक अनरिलायबल नैरेटर भी है, मतलब उसका अपना ट्रॉमा उसकी यादों को, उसकी समझ को अफेक्ट करता है।
हाँ, पाठक को धीरे धीरे समझ आता है कि शायद पूरी कहानी वो नहीं है जो एलेनोर बता रही है। ये दिखाता है कि ट्रॉमा हमारी अपनी कहानी को भी हमसे छुपा सकता है।
हाँ, अब आयरनी का इस्तेमाल तो कमाल है, टाइटल ही सबसे बड़ी आयरनी है।
और वो ड्रामेटिक आयरनी, जहाँ हमें पता है कि मम्मी कॉल्स असली नहीं है पर एलेनोर को नहीं पता, इससे टेंशन और सिंपथी दोनों बढ़ती हैं।
सिंबल्स भी बहुत अच्छे हैं, चेहरे के निशान, वोडका, वो ऑफिस का पौधा पॉली।
हाँ, पॉली उसकी खुद की ग्रोथ का सिंबल बन जाता है।
और फॉरशैडोइंग, आग, मम्मी, खोई हुई बहन के छोटे छोटे हिंट्स पूरी कहानी में है, जो सस्पेंस बनाए रखते हैं।
और सबसे खास बात है ह्यूमर और पैथोस का बैलेंस, आप हंसते भी हैं और आंखें नम भी होती हैं।
ये किताब को भारी होने से बचाता है,
पाठक पर इसका गहरा असर होता है। ये हमें सिंपैथी सिखाती है, अपनी जजमेंट्स पर सवाल उठाने को कहती है,
याद दिलाती है कि हर इंसान की अपनी एक कहानी है, अपना एक संघर्ष है।
शायद इसे पढ़कर हम अपने आसपास के लोगों को थोड़ी ज्यादा ध्यान से देखने लगे।
बिल्कुल,
उन एलेनोर जैसे लोगों को।
और ये हमें साधारण सी दयालुता की कीमत फिर से याद दिलाती है,
शायद दुनिया को बदलने के लिए बड़े कारनामों की नहीं, बस थोड़ी ज्यादा समझ और सहानुभूति की जरूरत है ना।
बिल्कुल,
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।